नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएंगे और ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल होंगे। यह समारोह मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतीक होगा। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री सप्त मंदिर जाएंगे। बाद में प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे और राम दरबार गर्भगृह में दर्शन और पूजन करेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे, जो मंदिर निर्माण के पूरा होने और सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि गीता का संदेश केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व का ग्रंथ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि गीता का संदेश लोगों को संबल और निराशा में भी आशा जगाता है। पहलगाम आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है।
पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है। वह घटना भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी। आतंकवादी और उनके सरफ तरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के सम्मान में रात्रि भोज आयोजित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों सहित कई गणमान्य व्यक्ति रात्रिभोज में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सबके सर पर कुल मिलाकर लगभग 50 लाख रुपए का इनाम था। 10 पुरुष और 5 महिला माओवादियों ने जिला पुलिस मुख्यालय में सुकमा की पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के समक्ष औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर अपने हथियार सौंप दिए। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को चीन में ट्रांजिट के दौरान हवाई अड्डे पर रोके जाने के मामले में चीन और नई दिल्ली में चीनी पक्ष के समक्ष कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों ने कहा कि शंघाई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी इस मामले को स्थानीय स्तर पर उठाया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारतीय क्षेत्र है और वहां के निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उसके साथ यात्रा करने का पूरा अधिकार है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने यह भी कहा कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई नागर विमानन से जुड़े शिकागो और मॉन्ट्रियल संधि का उल्लंघन है। भारतीय सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता ही मैन धर्मेंद्र का कल मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। 89 वर्षीय धर्मेंद्र स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वरिष्ठ फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल वेव्स फिल्म बाजार 2025 का समापन हो गया। 5 दिन का यह आयोजन वैश्विक सहयोग, रचनात्मक आदान प्रदान और सिनेमाई नवाचार से युक्त रहा। दुनिया भर के फिल्मकार, निर्माता और उभरती प्रतिभाओं ने इसमें संचालित सत्रों और परियोजना प्रदर्शनी में भाग लिया। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया। ढाका में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने ताइवान को 35-28 से हराया। भारत ने सेमीफाइनल में ईरान को 33-21 से पराजित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत की सराहना की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।